तीसरा अध्याय अर्जुन के एक प्रश्न से शुरू होता है। अर्जुन कहता है, जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। हे भगवान, अगर आप ऐसा सोचते हो कि ज्ञान योग कर्म से श्रेष्ठ है तो मेरे को आप बार बार कर्म करने को क्यों कहते हो। दूसरे अध्याय में भगवान ने कई बार कहा, उत्तिष्ट, चलो युद्ध करो युद्ध करो, मगर आपने ज्ञान की भी बहुत प्रशंसा की है। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी बताए आपने, मेरे को वो अच्छा लगता है ज्यादा। फिर दूसरे श्लोक में कहता है, व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तद एकम बद निश्चित येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम। आपने जो है ना जो वाक्य कहने मोहित करने वाले हैं, मोहित करने वाले हैं, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। आपने दोनों की प्रशंसा कर दी है, कौन सा ठीक है? एक एक मेरे को बताओ, मेरे को क्या करना है एक बताओ। आपने दूसरे अध्याय में ज्ञान योग की बहुत प्रशंसा की है, कर्म योग की बहुत प्रशंसा की है, मेरे को आप एक बताओ। तो भगवान कहते हैं, लोकस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न गया, कि यहां पर जो है रास्ता एक ही है, दो नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। एक रास्ता है मगर स्टेज दो है। क्या स्टेज दो है? कि पहले आपको कर्मयोग करना है। क्यों करना है? मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध केवल कर्मयोग से होगा। कर्मयोग क्या होता है वो तो बताएंगे अभी। अभी हम क्या करते हैं? हम कर्म करते हैं, वो कर्म योग नहीं है। भगवान ऐसा कर्म करने को कहेंगे जिससे कि आपके कर्म योग बन जाए। योग बन जाए मतलब आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। अब मजे की बात है, भगवान कोई नया कर्म नहीं कहेंगे, इतनी माला पूजा करो जप करो, कुछ नहीं कहेंगे। कैसे आपके कर्म कर्म योग बन जाएंगे ये भगवान बताएंगे। कहते हैं ये तो पहले भी था, पूरा प्रोक्ता। पूरा प्रोक्ता मतलब सृष्टि के पहले भी ये दोनों मार्ग थे। सृष्टि के पहले दोनों मार्ग थे मतलब जब हमने ये संसार बनाया, फिर प्रजापतियों को बनाया कि आप लोग ये संसार चलाओगे, तो उनको हमने कर्मयोग दिया, प्रवृत्ति मार्ग दिया। और सनक सनंदन सनत कुमार इन सबको निवृत्ति मार्ग दिया। तो जो जिसका अधिकारी है वो दोनों मार्ग आगे भी थे। आपको भी क्या करना है? बोला आपको प्रवृत्ति मार्ग करना है। अभी प्रवृत्ति मार्ग करने के बाद में आप उसके निवृत्ति मार्ग के अधिकारी बनोगे। जब अधिकारी बनोगे तब आपको श्रवण मनन निधि ध्यासन करना है। ये निवृत्ति मार्ग है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले कर्म योग करना है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम केवल कर्म करते हैं। जो हम अभी कर्म करते हैं वो बंधन हो जाता है। कैसे बंधन होता है बताएंगे अभी। वो ज्ञान योग है ना सांख्या नाम, कर्म योग है ना योगी नाम। जो ज्ञान के अधिकारी हैं उनके लिए ज्ञान मार्ग है, जो कर्म के अधिकारी हैं योगी नाम। योगी नाम का मतलब क्या बताया था मैंने, कब बताया था भूल गए, कब से चल रहा है तृतीय अध्याय। योगी नाम का मतलब यहां होता है जो स्पिरिचुअल साधना अभी शुरू कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल साधना अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए जो है कर्म योग है। तो हम लोग कौन है, बिगिनर हैं। क्या करना होगा, कर्म योग। ये कर्म योग न योगी नाम, ये जो पाद है इसकी पूरी व्याख्या ये तीसरा चैप्टर है। अब यहां पर ज्ञान की बात नहीं होगी, केवल एक पाद की व्याख्या बाकी जो है पूरे अध्याय के अंदर में है। न कर्मणा अनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषो अस्मिते। अगर कोई आदमी सोचे कि मैं कर्म नहीं करूंगा और मेरे को नैष्कर्म मिल जाएगा, नैष्कर्म मतलब परफेक्शन। परफेक्शन क्या, हमने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारी वासना नहीं रहेगी तो हमारे में कामना नहीं आएगी, हमारे में अगर इंटेलेक्ट में बुद्धि में कामना अगर नहीं आई तो शरीर के लेवल पर कर्म नहीं होगा। अगर हम कर्म करते हैं तो इसका मतलब है उसके पीछे हमारी बुद्धि में कामना आई, डिजायर आई। वो डिजायर कैसे आई, हमारी वासना के अनुसार आई। वासना क्या है, अज्ञान है। क्या अज्ञान है, हमको अपने स्वरूप का भान नहीं है, हम कौन है ये नहीं पता हमें, और सुखी होने के लिए हम कर्म करते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप कर्म ना करो तो आपको वो नैष्कर्म नहीं मिलेगा। नैष्कर्म कब मिलेगा, ज्ञान होने से नैष्कर्म होगा। जब ज्ञान होगा वासना खत्म, डिजायर खत्म, एक्शन खत्म। आपने अगर ज्ञान नहीं प्राप्त किया और आप बोलोगे कर्म नहीं करेंगे तो हमको नैष्कर्म मिल गया। ज्ञानी को कर्म की कोई लालसा नहीं होती है क्योंकि उसकी कामना नहीं है, मगर वो कर्म बहुत करता है, दूसरों के लिए करता है। अच्छा मेरे को ये बताओ, भगवान को इस दुनिया से कुछ लेना है क्या, कुछ नहीं लेना है हमको, मगर सबसे ज्यादा परेशान भगवान करते हैं। इतने लोगों का खाने की व्यवस्था करना, इतनी पूरी सृष्टि को चलाना, उसका क्रिएशन, डिजोल्यूशन, सस्टेनेंस, मगर भगवान करते हैं। तो कहते हैं कर्म के आरंभ नहीं करने से आपको नैष्कर्म नहीं मिलेगा, बल्कि कर्म करने से नैष्कर्म मिलेगा। कैसे नैष्कर्म मिलेगा, कर्म करने से। देखो हम साइंस आपको बताते जा रहे हैं, आपको पकड़ लेना होगा। नैष्कर्म कैसे मिलेगा, नैष्कर्म मतलब क्या, सिद्धि, सिद्धि मतलब क्या, परफेक्शन, परफेक्शन मतलब क्या, ज्ञान। जिस दिन आपको ज्ञान मिल जाएगा उस दिन आपके अंदर वासना जीरो। अगर वासना नहीं है तो आपके अंदर कामना नहीं आएगी। अगर आपके अंदर कामना नहीं है तो आप जो है इस जगत के अंदर सुख के लिए कुछ खोजने नहीं जाओगे। इसका यह मतलब नहीं कि खाना पीना बंद हो जाएगा, ऐसा कभी मत समझना कि जो ज्ञानी होता है वो खाता पीता नहीं है, कि सोता नहीं है, ऐसा नहीं, खाएगा पिएगा ज्ञानी। मगर ज्ञानी को यह पता है कि यह जगत मेरे को सुख नहीं देता है, सुख का कारण मैं हूं। और अज्ञानी, अज्ञानी को यह पता नहीं है मैं सुख का कारण हूं, वो सोचता है कि संसार की वस्तुएं मेरे को सुख देती हैं, ये मकान मेरे को सुख देता है, चलो एक मकान अब दो और एक ले लेते हैं, डबल सुख हो जाएगा। डबल सुख तो नहीं होता, डबल दुख हो जाता है। तो सिद्धि कैसे मिलेगी, कर्म करने से मिलेगी। कौन सा कर्म, कर्म योग करने से आपको सिद्धि मिलेगी, कर्म योग करने से मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो अज्ञान खत्म। देखो ये साइंस है, पूरा साइंस है, एक के बाद एक घटना घटेगी। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। अगर कोई कहे कि मैं तो काम कर रहा था उसको छोड़ देता हूं, तो भगवान कहते हैं कि काम नहीं करो या कर रहे हो उसको भी छोड़ दो। और तुम सोचोगे कि हमको सिद्धि मिल जाएगी, परफेक्शन मिल जाएगा, हम ज्ञानी बन जाएंगे, बोले ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो आप ज्ञानी कैसे बनोगे? तो बोले कर्म करना होगा। हम नहीं करेंगे, एक आदमी चुप से बैठ गया, कर्म नहीं करेंगे। भगवान कहते तुम्हारा बाप करेगा कर्म, कैसे नहीं करोगे? कहते हैं नहीं कश्चित क्षणम अपनी जातु तिष्ठति अकर्मकृत। आप एक मिनट नहीं बैठ सकते, एक मोमेंट नहीं बैठ सकते बिना कर्म के, कर्म होता रहेगा। कार्यति अवस कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। आप अवस हो, आपके हाथ में नहीं है, आप उसको रोक नहीं सकते कर्म को। कैसे कहते हो? आप मेरे को काम करने कहोगे, हमने हाथ बंद करके रख लिया, नहीं करेंगे, जाओ नहीं करेंगे, ठीक है। शरीर के अंगों को आपने रोक लिया, आप बताओ आपका मन के विचारों को रोक पाएंगे? मन में कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाथ अगर बंद हो, हम चले नहीं, बैठे रहे जगह, मन बंद हो जाएगा? मन बंद नहीं होगा। अच्छा जब आप कहते हो तो ठीक है, हम रात को जब सो जाते हैं तो मन भी बंद हो जाता है, तब कैसे कर्म होता है? सुसुप्ति के अंदर, डीप स्लीप के अंदर मन नहीं है, कर्म। भगवान कहते हैं कि सांस ले रहे हो, वो भी कर्म है। डाइजेशन हो रहा है, वो भी कर्म है। सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, बोलो कर्म हो रहा है, मगर आपके बस में नहीं है, प्रकृति के बस में है वो। आपके बस में अगर रख देते भगवान की सांस लेना, आप आलसी आदमी बोलते बोले सांस ही नहीं ले, चलो भगवान ने नहीं रखा आपके बस में, अवस कर दिया। फिर भगवान कहते हैं कि अच्छो कर्मेंद्रियानी संयम यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। एक व्यक्ति बोलता है नहीं ठीक है, हमने समझ लिया कर्म नहीं करेंगे, हम चुप से बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारा मन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर मन चल रहा है तो ये मिथ्याचार है, तुम रोक नहीं सकते हो। कैसे तुमने किया ये, तुम्हारा मन कहां घूम रहा है? बोला इंद्रियों के अर्थ में। इंद्रियों का अर्थ मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स में, इंद्रियों के विषय में हमारा रमन कर रहा है मन। भगवान कहते हैं ये मिथ्याचार है। तो सदाचारी कौन है? मिथ्याचारी आपने बता दिया, सदाचारी बताओ। तो सदाचारी भगवान बताते हैं ये सदाचारी है। यस्तु इंद्रियानि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योग असक्त सविशिष्यते। एक व्यक्ति है, उसने क्या किया? इंद्रियों को और मन को नियम किया। नियम किया मतलब कंट्रोल किया, संयम किया करके कर्मेंद्रिय कर्मयोगम। और कर्मेंद्रियों से क्या कर रहा है? कर्म योग कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, कर्म योग कर रहा है। कहते हैं असक्त सविशिष्यते। असक्त में वो किसी के साथ में अटैच नहीं होता है, असक्त सविशिष्यते। अब भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, अब क्या करना है तुमको? तो ये भगवान का आदेश है। क्या आदेश है? नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायु या कर्म न। बोलो अपना जो है नियतम कुरु कर्म, आपके जो नियत कर्म है वो रोज करो, बराबर करो इसको। अकर्म से नियत कर्म करना या साकाम कर्म करना अच्छा है। अगर कोई चुप से बैठा रहे उसे कुछ तो करे तो उससे लाभ होगा। भगवान कहते हैं नियत कर्म करो, अगर नहीं करोगे शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धियत अकर्मना, अगर कर्म नहीं करोगे तो आपकी शरीर यात्रा भी मुश्किल है, शरीर यात्रा नहीं कर सकते। तो भगवान हम सबको उद्देश्य करके कहते हैं कि आप अपने नियतम कुरु कर्म। देखो ज्ञान अर्जुन को हो रहा है, कहां हो रहा है, युद्ध भूमि में, उसको युद्ध करो नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहा उनको, आदेश क्या दिया, नियतम कुरु कर्म, तुम्हारा जो नियत कर्म है वो तुम करो, तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है वो करो। अब युद्ध भूमि में अर्जुन का कर्तव्य क्या है, युद्ध करना, हम तो युद्ध भूमि में नहीं है तो हमारा क्या कर्तव्य है, आपके कर्तव्य सब लिखे हुए हैं, क्या करना है आपको। हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा आगे की थी। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म श्रुति में किसी फल के लिए नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्म का जो अधिकारी है उसके लिए वह नियत कर्म है। ऐसे कर्म जिसके लिए श्रुति के अंदर कोई फल नहीं बताया, हमारे कर्तव्य कर्म जो हैं, कहते हैं कि वो आप करो। तो हम लोगों ने देखा था कि कर्तव्य कर्म एक तो हमारे अपने प्रति होता है, अपने प्रति मतलब अपने शरीर को साफ रखना, नरिश करना, इसकी देखभाल करना, ये हमारा कर्तव्य। उसके बाद दूसरा दूसरा क्या है, अगर आपने विवाह किया है तो आपका कर्तव्य कर्म होता है कि आप अपने परिवार का देखभाल करें। विवाह नहीं किया तो ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, अगर विवाह कर लिया है तो आपको अपने कर्तव्य कर्म करने हैं, आपके परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, ये सब कर्तव्य कर्म करने हैं। उसके बाद समाज, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वो आपको कुछ सुविधाएं देती हैं तो वहां टैक्स देना होगा, वो टैक्स दो। यहां तो आप गड़बड़ नहीं कर सकते, इंडिया में लोग बहुत गड़बड़ कर लेते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, कहीं उनको रास्ते मालूम है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अब जैसे मान लो एक युद्ध लग गया, एक वार शुरू हो गई और गवर्नमेंट ने कहा जो 21 वर्ष के ऊपर हैं, 28 के नीचे हैं या 30 के नीचे हैं, वो सब मिलिट्री में भर्ती हो, क्या कर्तव्य अब आपका राष्ट्रपति, आपकी उम्र अगर उसके बीच में है तो आप जाओ, नहीं जाते हो फिर पनिशमेंट है, बाद में, अभी नहीं जाओगे मत जाओ, बाद में पनिशमेंट है, ये आपका कर्तव्य हो जाता है, अपने राष्ट्र का सेवा करना, उसकी सीमा का सुरक्षा करना, ये आपका कर्तव्य कर्म है। धर्म के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, धर्म के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि धर्म का प्रचार हो, शास्त्र का प्रचार हो, ये हमारा कर्तव्य है। देवताओं के प्रति हमारा कर्तव्य है, देवताएं हमको देखते हैं, ये बताएंगे आगे श्लोक आने वाला है कि अगर देवताओं की पूजा करोगे तो देवता तुमको देखेंगे, ऐसा भगवान कहेंगे, तो देवताओं के प्रति एक है। मगर वो कहते हैं कि भाई आप तो देवताओं से लेने वाले हो ना, तो पेटिशन फाइल किसको पहले करना है, अगर आपको भीख चाहिए, आपको कोई फेवर चाहिए तो आपको पहले उसके पास जाना होगा ना, आपको धनी व्यक्ति से पैसे चाहिए वो आपको देने आएगा कि आप जाकर बोलोगे मुझे पैसे दो। तो अगर देवताओं से कुछ चाहिए तो पहले अर्जी किसको डालनी है, आपको डालनी है, आपको उनकी पूजा करनी है, तब वो खुश होंगे फिर आपको देंगे, ऐसा भगवान आगे जाके कहेंगे। तो देवताओं के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। उसके बाद भूत, पंच महाभूत के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, हमने आगे भी आपको कहा है पंच महाभूत को प्रदूषित करने वाला केवल एकमात्र इंसान ही है और इस दुनिया में कोई इसको प्रदूषण नहीं करता। नदियों का प्रदूषण किसने किया, पृथ्वी के अंदर फर्टिलाइजर ज्यादा डाल के उसकी उर्वरता का नाश किसने किया, वायु का प्रदूषण किसने किया, अभी तो स्पेस का भी प्रदूषण हो गया है, सब स्पेस वो जाके वहां ऊपर पड़े हुए हैं सब, क्या बोलते हैं उसको, स्पेस डेब्री, वो वहां घूम रहे हैं ऊपर में, वहां भी है। उसके बाद पितृ माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है, उन्होंने जन्म दिया है उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। और नृ अन्य व्यक्तियों के प्रति है, हमारे पहले बहुत व्यक्ति इसके अंदर सेवा करके बहुत कुछ बना के गए हैं, हम जब आए थे तो रास्ता सब कुछ लगा बना हुआ था ना, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, सब कुछ है, इन सब के प्रति हमारा कर्तव्य है। अच्छा, नियत कर्म जो है ना, कौन कौन से नियत कर्म है, आपको हमने एक बार बताया था, 6 किस्म के कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, ये 4 मिला के नियत कर्म, उसके बाद काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म। तब हम लोग ने 6 को अब 3 में ले आते हैं, नियत कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म। हमारी चॉइस इन 3 के अंदर है, भगवान आके नहीं बोलेंगे कि निषिद्ध कर्म मत करो, काम्य कर्म मत करो, भगवान तो ये बोलेंगे नियतम कुरु कर्म, तुमको अपना कर्तव्य कर्म करना है, कैसे करना है वो भगवान बताएंगे, हम जैसे कर रहे हैं वैसे नहीं करना है, हम सब कर्तव्य कर्म करते हैं मगर वो गलत है, वो सब काम्य बन जाता है, और काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म दोनों आपको बांधते हैं। और जैसा भगवान आपको कहेंगे कि कर्तव्य कर्म ऐसे करो तो आपका बंधन जो है छूटता जाएगा। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारे कर्तव्य कर्म बदलते रहते हैं। बचपन में हमारा कर्तव्य कर्म था पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद हमने विवाह कर लिया, बोला गृहस्थी चला, गृहस्थी के अंदर आपने खत्म कर लिया, 50 साल खत्म हो गए, रिटायर हो गए 55 साल में, 65 साल में, उसके बाद बोलते हैं वानप्रस्थ जाओ, उपासना करो, 75 साल के ऊपर बोलते हैं आप ज्ञान के लिए संन्यास लो। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे कर्तव्य भी बदलते रहते हैं। ये तो आश्रम के हिसाब से हुआ, वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलग अलग कर्म है, सबके अलग अलग कर्म है। हम जैसे ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो हमारे कर्तव्य कर्म लोग बता देते हैं, कौन हो भाई तुम, क्लास 4 स्टाफ में ज्वाइन किए हो तो आपको ये काम करना है, क्लर्क हो ये काम करना है, ऑफिसर हो ये काम करना है, आप मैनेजर हो आपकी ड्यूटी ये है, इतना कुछ देखना है आपको। तो हर जगह आपको कर्तव्य कर्म बता देते हैं कि आपका ये कर्तव्य कर्म है, अगर आप अपनी ये कर्म न करो तो भगवान कहते हैं कि शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धे त कर्म न, अगर कर्म नहीं करोगे तो आपकी शरीर यात्रा ही नहीं चलेगी। एक तो शरीर की यात्रा है, शरीर की यात्रा मतलब जन्म, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, कर्म नहीं करोगे तो ये भी नहीं चलने वाला है। और एक जीव यात्रा होती है, ये कौन होती है जीव यात्रा, तो पहली बार सुना है, शरीर यात्रा तो समझ में आती है, जीव यात्रा क्या होती है, जीव की भी एक यात्रा होती है, वो क्या है, बोले देखो एक तो होता है बद्ध जीव, बद्ध जीव, हाँ किसको कहते हैं बद्ध जीव, तो गुरु जी कहते हैं कि जो देहात्म भाव विशेष राग, देहात्म भाव जो देह को आत्मा मानता है, हम लोग सब देह को आत्मा मानते हैं, विशेष राग है, विषयों के साथ में हमारा अटैचमेंट है, मेरा घर है, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, विशेष राग है। कर्तृत्व भाव है, तीसरा कहते हैं जिसके अंदर कर्तृत्व भाव है, मैं करने वाला हूं, किसने किया, मैंने किया है, किसका घर है, मेरा घर है, कर्तृत्व भाव है। और जगती सत्य बुद्धि, जगत सत्य है, तो गुरु जी कहते हैं ये ऐसा व्यक्ति को हम बद्ध कहते हैं। अब मिलाते जाना आपके पास में ये 4 हैं कि नहीं, अगर ये 4 हैं तो आपको गुरु जी कहते हैं आप बद्ध जीवो, तो इसका क्या होता है, फिर रिजल्ट क्या होता है, बोलते सर्वदा दुखी, वो हमेशा दुखी रहता है। फिर दूसरा क्या होता है, तो दूसरा मुमुक्षु होता है, जब हम 55-60 साल में रिटायर कर जाते हैं ना, रिटायर करने के टाइम में फिर हम बोलते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं, हमारा जीवन बहुत सक्सेसफुल रहा, मेरा नाम, मैं उस कंपनी का सीईओ होकर रिटायर किया हूं, पैसे भी हमारे पास बहुत हैं, धन भी है, भोग भी हमने सब किए हैं, मोट बात लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना तीनों हमने पाया है, मगर हम अभी भी सुखी नहीं है। उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो 65 साल की उम्र में जब हम अपना बैलेंस शीट बनाएंगे ना, चिट्ठा बनाएंगे, तो हम देखेंगे क्या किया, पढ़ाई लिखाई की हमने, हम इंजीनियर डॉक्टर बने, नौकरी की, IAS पोजीशन उस कंपनी में पाए, हम दुनिया भर घूमे भी, तरह तरह के भोग भी किए हमने, हमारा नाम दुनिया जानती है, पैसे भी हैं मेरे पास में, मगर अभी भी हम सुखी नहीं है, सुखी नहीं है। कैसे होगा, क्या होगा, अब ये मुमुक्षु हो गया, अब उनको पता लग गया कि सारा जीवन हमने लगाया मगर सुखी तो नहीं हुआ अभी तक। अब ये व्यक्ति जाता है कि भाई आपको पता करना है ये सुख का साधन क्या है, वो सत्संग में जाता है, सत्संग में जाता है, तो उसको फिर सत्संग में बताते हैं कि तुमको दास बनना है, ईश्वर का दास बनना है, यू हैव टू बी अ सर्वेंट। तुम तो कंपनी का सर्वेंट रहे हो ना, उस कंपनी का भी एक मालिक था, मगर उस मालिक का भी एक मालिक और है, बोलो उसका आपको दास बनना है। भगवान बताने वाले हैं, हम सबको भी दास बनना है, बताएंगे वो, कहां बताएंगे, इसी अध्याय में बताएंगे, कब बताएंगे, 30वें नंबर श्लोक में बताएंगे, अभी हम लोग 8 नंबर में हैं। 30वें नंबर श्लोक में भगवान बोलेंगे कि आपको दास बनना है। तो ये कहां पता लगेगा, कहां सत्संग में पता लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो रिटायर करते हैं ना सीईओ, वो सब फिर चिन्ह में मिशन आते हैं, फिर उनको बोलते हैं दास चलो वैकुंठ करो, ईश्वर के दास बनो, सेवा करो, यहां से शुरू करना होगा। ठीक है, तो जब वो ईश्वर के लिए कर्म करना शुरू करते हैं, कर्मयोग क्या है, कर्मयोग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो कर्म है, आज तक वो जो सीईओ बने रहे ना, वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम नहीं किया उन्होंने, किसकी प्रसन्नता के लिए किया, अब सत्संग में आने के बाद में वो कहेंगे कि नहीं ईश्वर के लिए अब करो, अब वो करते 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 मन शुद्ध होगा, मन जब शुद्ध होगा तो फिर बोलेंगे मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, कि देवता कौन है, इसकी पूजा लोग करते हैं, मैं कहां से आया हूं, हमारे जीवन का पर्पज क्या है, यही पर्पज था सारा जीवन, ईट एंजॉय एंड ब्रीड, बोले तो एनिमल्स भी वही करते हैं, हमारे से क्या फर्क है उसमें, उसको फिर जिज्ञासु कहते हैं। देखो कहां से शुरू किया था हमने, बद्ध से, मुमुक्षु हुआ, मुमुक्षु के बाद में अब साधक बना, साधक के बाद में अब जिज्ञासु हुआ, ये जीव यात्रा है, अब ये जिज्ञासु जाता है गुरु के पास में, गुरु के पास में जाके वो शिष्य बनता है, उसके पांव छुएगा, सरेंडर करेगा, तब उसको शिष्य मानेंगे। फिर वो प्रश्न करता है गुरु से कि मेरे को ये प्रश्न है, फिर गुरु उसका उत्तर देता है, फिर वो सिद्ध बनता है, ज्ञानी बनता है, ये जीव यात्रा है। तो इसकी चर्चा अभी यहां नहीं कर रहे हम लोग, हमने ऐसे बाई द वे आप लोगों को बता दिया। भगवान तो कहते हैं शरीर यात्रा भी आपकी नहीं चलेगी, अगर कर्म नहीं करोगे तो शरीर चलेगा नहीं चलेगा, जीव यात्रा की तो आप बाद ही कर दो। भगवान आलस्य की खूब निंदा करते हैं, आलस्य की बहुत निंदा करते हैं भगवान। भगवान खुद कहते हैं कि मेरे को तो इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैं बहुत कर्म करता हूं, बहुत कर्म करता हूं। और कई जगह आपको ये मिलेगा, आलस्य कुतो विद्या, जिसको विद्या चाहिए अगर वो आलस करे तो विद्या कहां से मिलेगी। आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर आलसी बन जाओ, आज का काम कल, कल का परसों, परसों क्या विद्या मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। आलस्य महान शत्रु, शास्त्र आपको कहेंगे कि आलस जो है वो आपका महान शत्रु है। लोग काम ना करने के बहुत बहाने लगाते हैं, काम अगर ना करना हो ना तो बहुत बहाने लगाते हैं। अच्छा, अर्जुन सोच रहा है कि भगवान मैंने समझ लिया, मेरे को ड्यूटी करनी है। आप कह रहे हो ना कर्तव्य नियतम करो, कर्म कर्तव्य कर्म करो, मेरे को समझ में आ गया, वेरी गुड। मगर एक बात है, मगर हमको अपनी ड्यूटी करते करते कभी बड़ा बोरिंग लगता है, टायरिंग लगता है, हम थक जाते हैं, करने की इच्छा नहीं होता, रोज ही एक के काम करते रहते हैं, बोरिंग जॉब है ये। किसे पूछो भाई कैसा जीवन आपका चल रहा है, अरे मत पूछो भाई, चल रहा है, किसी तरीके से गाड़ी टान रहे हैं, ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसा कहते हैं, कैसे हो भाई, कैसे चल रहा है जीवन, अरे मत पूछो, बहुत बुरा हाल है, किसी तरह गाड़ी टान रहे हैं। देखो कभी कभी हमारे मन में भी ऐसा आता है, किसी तरह से गाड़ी टान। उनको ड्यूटी जब बोझ लगती है, मगर शुरू में बहुत उत्साह था, विवाह करने के टाइम में बहुत उत्साह था, उसके बाद में बोझ लगता है, अब संसार चलाना बड़ा बोझ लगता है। ऐसा लोग कहते हैं। तो देखो, अगर आपको कर्म से अगर प्यार हो, सेल्फ इंस्पायरिंग हो, तब आपको कर्म अच्छा लगेगा। अगर कर्म से प्यार नहीं है ना, तो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं, यहां पर शंकराचार्य जी लिखते हैं, जो तू ऐसा समझता है कि बंधन कारक होने से कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म बांधता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, काम में कर्म और आपका निषिद्ध कर्म आपको बांधेगा, इसलिए काम नहीं करना चाहिए, तो यह समझना भी तेरा भूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कर्म के दोष क्या है? बोले एक तो कर्म टायरिंग, मेरे को थका देता है कर्म, दूसरा बांधता है, बांधने का मतलब वासना बढ़ती है, वासना बढ़ने का मतलब हमको फिर एक बार जन्म लेना है, यह कर्म का बंधन है। कौन कोई बताएगा अनर्थकारी परंपरा? ये अनर्थकारी परंपरा, जैसे गुरु शिष्य परंपरा होती है ना, ऐसी एक हमारी अनर्थकारी परंपरा है। क्या है? अज्ञान। अज्ञान, अज्ञान है मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसको अज्ञान। उस अज्ञान के कारण कामना, उस कामना के कारण कर्म, कर्म के बाद कर्म फल आएगा। जब कर्म फल आएगा, या तो हम उसको पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। ये हमारी सबकी, दोनों की एक लिस्ट बनी हुई है ना, इस दुकान का समोसा अच्छा है, हम बार बार वहां जाएंगे, इस दुकान का समोसा मेरे को पसंद नहीं आया, हम नहीं जाएंगे यहां, मगर दूसरे को पसंद है, वो वहां जाता है, सबके अपने अपने पसंद है। तो जैसे ही कर्म किया, कर्म फल आया, कर्म फल के अंदर दो भाग हो गए, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, जो पसंद है वो हम बार बार करेंगे, यही कर्म का बंधन है। तो अविद्या काम कर्म का ये चक्र चलता रहता है। तो बंधन क्या है? बोले स्वतंत्रता नहीं है, सुख नहीं है, हमको थकान हो जाती है, ये सब बंधन के हैं, इसलिए कर्म दोष युक्त है। देखो अर्जुन भी जो है भागना चाहता था युद्ध भूमि से, पहले अध्याय में उसने कहा था कि हमको लड़ाई नहीं करनी है, हम जाते हैं, हम वहां जाके ब्राह्मण वृत्ति करेंगे, भिक्षा लेंगे। देखो क्षत्रिय को भिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को है, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आप कौन है। हम बोलेंगे भाई हम पैदाइशी तो क्षत्रिय हैं मगर अभी ब्राह्मण है। बोले कैसे आप ब्राह्मण हुए, आपका जन्म तो क्षत्रिय कुल में है, ब्राह्मण कैसे हुए। देखो जो वेदाभ्यासी होता है ना, जो वेद पढ़ाता है वो सारे ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वो भी ब्राह्मण है। ब्रह्मचारी जो पढ़ रहा है वो भी ब्राह्मण है। तो इन लोगों को भिक्षा लेने का अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है। आप जाके भीख नहीं मांग सकते, मैं मांग सकता हूं। मैं मांग सकता हूं कि मेरे को चाहिए, मेरे को ये ला के दो। कई लोग जो आते हैं ना सोशल वर्क के लिए, पहले पहले बहुत सोशल वर्क करेंगे। क्या सोशल वर्क है? अच्छा ठीक है, हमने ये गांव ले लिया है, इस गांव के अंदर हमको सेवा करनी है। तो आप 5 दिन अपने ऑफिस में काम करो, ठीक है, शनि रविवार को आप जाया करो वहां पर, उनको देखो, उनको कुछ पढ़ाओ, सफाई करो, कुछ सुविधा ला दो। तो उसके बाद में फिर कुछ दिन के बाद में लोग कहने लगते हैं कि स्वामी जी मैं तो जा रहा हूँ बहुत दिन से, मगर दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए। देखो अब उनको नहीं अच्छा लगता है, भागना चाहते हैं वहां से, इसलिए कहते हैं दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। फिर यहां कई कई लोग ऐसा करते हैं कि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं मगर और लोग नहीं कर रहे हैं। मेरे को आपने जो काम दिया था वो तो मैं कर रहा हूं मगर दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, कैसे चलेगा ये। भगवान कहते हैं कि अपना एटीट्यूड बदलो। क्या एटीट्यूड करना है कर्म के लिए वो अब भगवान बताने जा रहे हैं। देखो एक डॉक्टर के पास में एक रोगी गया। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है तुम ये दवाई लेना और साथ में दूध पीना। तो बोलता नहीं दूध नहीं पिएंगे, मेरे को नहीं अच्छा लगता। बोला ठीक है तुमने चीनी मिला लेना फिर अच्छा लगेगा। बोला हाँ अच्छा लगेगा। तो वैसे ही अपने जो हम लोग कर्म करते हैं ना उसमें थोड़ी चीनी मिलानी है फिर आपको अच्छा लगेगा। क्या चीनी मिलानी है तो भगवान बताते हैं।
यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र,
यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र,
लोकोऽयं कर्म बन्धनः,
लोकोऽयं कर्म बन्धनः,
तदर्थं कर्म कौन्तेय, तदर्थं कर्म कौन्तेय, मुक्तसङ्गसमाचर,
मुक्तसङ्गसमाचर, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, लोकोऽयं कर्म बन्धनः,
तदर्थं कर्म कौन्तेय, मुक्तसङ्गसमाचर।
लोकोयम कर्म बंधना, अयम लोक कर्म बंधना, इस लोक के अंदर कर्म बांधता है। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस लोक में कर्म बंधना कर्म बांधता है। कौन सा कर्म बांधता है? तो पहले पाद में लिखते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, अदर देन जो कर्म यज्ञ रूप से नहीं किया। यज्ञ अर्थात कर्मनो अन्यत्र, सब कर्म मानते हैं मगर एक कर्म आपको नहीं बांधेगा। कौन सा? अगर आप कर्म यज्ञ रूप से करोगे। भगवान ने केवल एक वर्ड जोड़ दिया यज्ञ। यज्ञ के क्या माने हैं वो हम देखेंगे। सारे कर्म बांधते हैं, केवल एक कर्म नहीं मानता अगर आप अपने कर्म यज्ञ के रूप में करते हो। ये यज्ञ क्या है देखेंगे। तदर्थं कर्म कौन्तेय, देयरफोर ओ अर्जुन उसके लिए काम करो। तदर्थं कैसे करो? मुक्त संघ समाचार, मुक्त संघ विदाउट अटैचमेंट, मुक्त संघ, संघ रहित समाचर, समाचर अपने कर्तव्य कर्म सम्यक आचरण करो। केवल एक वर्ड भगवान ने जोड़ दिया, कर्म को बद्दी करने को नहीं कहा। आप जो कर्म कर रहे हो वही करोगे, मगर वो कर्म को यज्ञ में बदलना है, यज्ञ में बदलना है। यज्ञ का मतलब क्या है? क्या वो फायर रिचुअल जो हम लोग गायत्री हवन करते हैं यज्ञ, क्या ये मीनिंग हो सकता है? बातचीत युद्ध भूमि में हो रही है, वहां यज्ञ हो सकता है क्या? तो यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब यहां यज्ञो वही विष्णु तैत्तिरीय संगीता में कहा गया है। यज्ञ का माने विष्णु। आप भी जहां से मर्जी वो पकड़ के ले आते हो यज्ञ का माने विष्णु, कोई माने हुआ? अच्छा, आप लोग विष्णु सहस्रनाम जानते हो? नहीं जानते हैं। विष्णु के हजार नाम, उसका नाम है विष्णु सहस्रनाम। उसके अंदर आता है यज्ञो यज्ञपति यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन, ये सब भगवान के नाम है, विष्णु के नाम है। और हमने आपको पहले बताया क्या शंकराचार्य जी लिखते हैं? यज्ञो वही विष्णु। तो कहते हैं हमारी बात नहीं मानो, तैत्तिरीय संगीता में लिखा हुआ है, उपनिषद के अंदर है ये। यज्ञ माने विष्णु। फिर हमने आपको बताया कि विष्णु सहस्र नाम में भी भगवान विष्णु के हजार नामों के अंदर ये आता है, यज्ञो यज्ञपति यज्वा यज्ञांगो यज्ञवान। इसलिए यज्ञ मतलब विष्णु। अगर आपका कर्म विष्णु, विष्णु मतलब ईश्वर के लिए, हम लोग बराबर कहते रहते हैं ईश्वर की प्रसन्नता, ईश्वर की प्रसन्नता। अगर आपका कर्म विष्णु के लिए हो रहा है, विष्णु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, तो वो कर्म आपको नहीं बांधेगा। देखो बहुत सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। आप जब ऑफिस में काम करते हो ना, तो वहां पर आप किसकी खुशी के लिए काम करते हो? आपके एम्प्लॉयर के लिए, मालिक की खुशी के लिए करते हो ना, जैसे बोलता वैसे करते हो। एक पांव पर खड़े होकर करो, आप खड़े हो जाओगे एक पांव पर, वो खुश होगा भाई, उसकी खुशी के लिए करते हो। अब मजे की बात है, उस कंपनी की वासना आपके पास नहीं आती कभी, कभी नहीं आएगी। तो कंपनी के लिए या अपने एम्प्लॉयर के नहीं के छोड़कर अगर भगवान को अपना एम्प्लॉयर मान लो, उसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। हम तो यहां नौकरी करते हैं, 30 दिन खटते हैं तो एक पे चेक एक दे देता है, और 12 महीने के बाद में एक बोनस देता है, हम बहुत उछलते हैं, बहुत मिल गया। महात्मा लोग कहते हैं कि जिसकी सारी दुनिया है वो कितना आपको दे सकता है आपको मालूम नहीं है, आप सोच नहीं सकते। वो लोग कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देता है, इतना देता है कि छप्पड़ फाड़ के देता है, आप ले नहीं सकते इतना दे देगा। तो क्यों नहीं उसकी नौकरी करें? तो उसकी नौकरी का मतलब क्या है? उसकी प्रसन्नता के लिए करो, बस इतना ही काम है। बहुत छोटा सा विज्ञान है। आप लोगों ने उपदेश सार में भी पढ़ा हुआ है, ईश्वर अर्पितम नेच्छयाकृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। ईश्वर को अर्पण करके, ईश्वर को अर्पण करके, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अगर कर्म करें तो वो कर्म चित्त शोधकम, चित्त शोधकम माइंड प्यूरिफाई करेगा, और उसके बाद में मुक्ति साधकम, आपको ज्ञान मिलेगा, मुक्ति हो गई। कितनी छोटी सी 2 लाइन के अंदर ने रमन महर्षि में कर दिया, आपको क्या करना है? कर्मयोग करना है, ज्ञान ले लो, मुक्ति। मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है पहले मन का शुद्धि, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। कैसे होगा? कर्मयोग से होगा। अभी जो कर्म कर रहे हैं उससे होगा? नहीं होगा। कर्मयोग क्या है? यज्ञार्थ, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कर्म होगा वो कर्म योग बन गया। कोई नया कर्म नहीं कहा, कोई नया कर्म नहीं कहा। आप इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर जो भी हो, जो कर रहे वही करो, केवल इतना मन में सोचो मैं जो कर रहा हूं इसे भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं। अगर वह तो ये आपका कर्मयोग बनता चला जाएगा। देखो हनुमान जी जो है ना, सुग्रीव का पहले नौकरी करते थे, सुग्रीव को सर्व करते थे। जैसे ही राम जी आए तो भगवान राम की सेवा करने लग गए। अब वो हनुमान जी वो हनुमान नहीं रह गए, अब उनका डिवाइन रूप हो गया। भगवान की सेवा करने से ये होता है। विभीषण, विभीषण क्या थे? असुर थे ना, रावण के भाई, असुर कुल में जन्म है, मगर राम की सेवा में लगे हुए थे, इसलिए भगवान के दर्शन हुए, उनको राज्य भी मिला। जटायु क्या था? जटायु तो गिद्ध था, वो तो मरे हुआ मांस खाता था, मगर उसने थोड़ा सा भगवान का काम किया तो देखो उसका उद्धार भगवान ने किया ना, जटायु का अपने हाथ में लिया उसको। तो ये सब क्या संकेत करते हैं? ये संकेत करते हैं कि हमको जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए काम करना है, फिर भगवान हम तो देखेंगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय, तो अपनी पसंद, लाइक डिसलाइक आप मत देखो, अपनी लाइक डिसलाइक मत देखो। आप जब कंपनी में काम करते हो तो आप लाइक डिसलाइक देखते हो? ये हमारी बीवी बीमार है, अभी हम नहीं जाएंगे टूर में, आप नहीं कर सकते ऐसा। एम्प्लॉयर बोलेगा जाना है, आपको जाना होगा। तो भगवान के लिए अगर हम कर्म करेंगे तो क्या होगा? अहंकार का त्याग होगा, अहंकार का, ईगो का त्याग होगा, और अहंकार का आस्ते आस्ते कम होना शुरू होगा। अहंकार जब कम होगा तो आपका मन प्रसन्न होगा और आपका क्वालिटी ऑफ एक्शन जो है बेटर होगा। जब आपका मन प्रसन्न होगा, ये सब साइंस है, एकदम पूरा विज्ञान है। आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे तो आप बोलोगे हम दासो, हम भगवान के दास हैं, फिर आपका अहंकार रहेगा? नहीं, हम तो दास हैं। और जैसे जैसे अहंकार कम होगा वैसे वैसे मन शांत होगा। जब मन शांत होगा, शांत मन से जो भी कर्म आप करेंगे उसका गुण बहुत अच्छा होगा, कर्म आपके अच्छे होंगे। शांत मन से किया हुआ हर काम जो है अच्छा होगा। मुक्त संग, मुक्त संग, शंकराचार्य जी कहते हैं कर्म फल संग वर्जित, कर्म फल का हम चिंतन नहीं कर रहे हैं, कर्म फल का चिंतन नहीं करते, यानी कि प्रसन्नता से हम फल स्वीकार करेंगे। देखो हम मंदिर में जब जाते हैं ना तो मंदिर में क्या भाव आता है? भगवान का भाव है, सब कुछ भगवान का है, मन हमारा प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, जो प्रसाद मिला हम प्रसन्न है। तो आपका जो माइंड के अंदर जो संकीर्णता है कि भगवान केवल मंदिर में ही है, वहां जाते हैं तो मन शांत होता है, इसको तोड़ो, मन को बढ़ाओ। भगवान केवल मंदिर में ही नहीं है, भगवान सब जगह है। यह ऐसा भाव आने से आपका संकीर्ण भाव खत्म हो गया। मुक्त संग बोले कर्म फल की चिंतन आपको उस टाइम में नहीं करना है। समाचर निर्वर्तय, इसी तरह करते रहो। देखो ये श्लोक ना सबको लागू है, इकोनॉमिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, जो भी हो, सब जगह ये लागू होता है। अगर आप लागू करोगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा। तो यज्ञ के अंदर हम स्वाहा 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 करते रहते ना, तो कोई धन की स्वाहा करता है, कोई पावर की स्वाहा। देखो बहुत लोग चाहते हैं ना धन चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं पावर चाहिए, तो तुम दूसरे जाति के पास क्यों जाते हैं? भगवान के पास जाओ ना। सबसे धनी व्यक्ति कौन है? भगवान है। सबसे पावरफुल कौन है? भगवान है। तो उनका काम करो, बाहर करने की क्या दरकार है? बहुत सुंदर ये यज्ञ का माने हम लोगों ने देखा। कि कर्म का गुण बढ़ेगा नंबर वन, और दूसरा कर्ता के अंदर बदलाव आएगा, हमारे के अंदर। तो कर्म एंड कर्ता दोनों के अंदर चेंज आता है। यज्ञ भाव से अगर हम कर्म करें तो उसके अंदर कर्म का गुण भी अच्छा होगा और कर्ता भाव के अंदर भी चेंज आएगा। तो गुरुदेव को लोग कहते थे कि आप थकते नहीं हो, इतना काम करते हो। मैं तो नहीं करता हूं, मेरा तो एक इंस्ट्रूमेंट है, नारायण करवाते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, हमको नहीं थकान आती है। और वो 3-4-5 घंटे ही सोते थे बस, बाकी वो काम करते रहते थे। बहुत बढ़िया। इसके बाद में भगवान कहते हैं कंक्लूजन के अंदर में कि कोई अगर भगवान के लिए कर्म करे तो वो कर्म बांधेगा नहीं। ये श्लोक का निष्कर्ष हुआ। क्यों नहीं बांधेगा ये हम लोगों ने देख लिया। केवल भगवान ने एक शब्द जोड़ दिया, यज्ञ। बस यज्ञ का मतलब विष्णु, विष्णु का मतलब ईश्वर। उसकी प्रसन्नता को लिए जो कर्म किया जाएगा वो नहीं बांधेगा। इसके अलावा जितने भी कर्म है सब बांधेंगे। अब बताओ आपने आज तक कैसे कर्म किए हैं? आपने गीता मैनुअल पढ़ा था कर्म करने के पहले? किसी ने आज तक आपको रोका? क्यों नहीं रोका? भगवान ने गारंटी दी हुई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म का अधिकार है, और किसी प्राणी को नहीं है, और किसी प्राणी को नहीं है। तो कैसे कर्म करना है? यज्ञ रूप से कर्म करना है, यज्ञ रूप से करना है। यहां रखने से नहीं होगा, फील्ड में करना होगा तब लाभ होगा। और ये साइंस है, साइंस एकदम पक्का है। ऐसा आप करोगे तो आपका मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो ज्ञान के अधिकारी होगे। मन नहीं शुद्ध होगा ज्ञान नहीं बैठेगा। एकमात्र उपाय चित्त शुद्धि का कर्मयोग है। किसी शास्त्र में और कहीं जगह भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल भगवद गीता बताती है कि मन कैसे शुद्ध करना है। और ये सबसे आसान तरीका है। दूसरे और तरीके हैं मन शुद्ध करने के लिए, क्या हैं? जप करो। तो बताओ 24 घंटे जप कर सकते हो, मन शुद्ध होगा, भगवान का नाम लेते रहो। मगर मन वहां होना चाहिए भगवान के नाम में। ऐसा नहीं हो कि यहां पर आप चिंतन कर रहे हो किसी और का और हाथ में माला चल रही है, ऐसा नहीं। पूजा, पूजा करने से मन शुद्ध होगा, 24 घंटे कर सकते हो? संभव नहीं है। तीर्थ यात्रा से होगा, 12 महीने तीर्थ यात्रा हो सकती है? नहीं हो सकती। गंगा स्नान से होगा, आप तो इंडिया जाते हैं गंगा में जाते ही नहीं है। सबसे सहज उपाय है दुनिया में कहीं भी आप बैठे रहो कर्म योग कर सकते, 24 घंटा भगवान का नाम हो सकता है, भगवान आपकी लाइफ में आ गए। हर कर्म के पहले आप भगवान का नाम सोचोगे कि अरे भगवान खुश होंगे कि नहीं। तो इस तरह से आपका मन शुद्ध होगा। दूसरा श्लोक केवल मीनिंग देख लेते हैं, दसवां श्लोक।
सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक।
भगवान कहते हैं कि ये मेरा अपना मत अभी का नहीं है, बोले बहुत पुराना चला आ रहा है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, सह यज्ञा हम सब के अंदर यज्ञ भाव है, भगवान ने ऐसा ही बनाया है सबको। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, और प्रजापति को भगवान ने कहा कि आपको इसी किस्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को इस किस्म से कर्म करने से आपका विकास होगा। अनेन प्रसविष्यध्वम्, अनेन माने इस भाव से, किस भाव से, यज्ञ भाव से। यज्ञ भाव से अगर आप कर्म करोगे तो आप सबका विकास होगा। ये सब वो वस्तु इष्ट काम दुख, और ये भाव बोले यही कामधेनु है, कल्प वृक्ष बोलो या कामधेनु बोलो, आप ऐसा करोगे आपकी सारी मनोकांक्षा पूर्ण होगी। और हम देखते भी हैं सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, सृष्टि के पहले जितने भी कुछ जो तैयार हुए थे सब कर्मयोग से काम कर रहे हैं, अभी तक करते आ रहे हैं, एक मनुष्य नहीं करता, बाकी सब कर रहे हैं, सब करते हैं। सूर्य आपको प्रकाश देता है, हीट देता है, चंद्रमा आपको शीतल किरण देता है, वृक्ष आपको फल देते हैं, पैसा मांगते हैं नहीं। ये तो बीच में हम लोग आ गए ना, ये मेरा पेड़ है, ये मेरी जमीन है, अब इसके लिए पैसे देने होंगे, अब ये करो वैसे करो, मगर प्रकृति के अंदर ऐसा नहीं है, प्रकृति ये काम कर रही है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, इसको हम डिटेल में फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओ
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि
Storage is almost full. Okay.